शरीयत पर चलने में जो रुकावट आती है, यानी इंसान शरीयत पर ना चल सकता हो अपनी किसी सुस्ती की वजह से, या किसी चीज़ की मोहब्बत की वजह से, या किसी चीज़ से नफ़रत की वजह से, या किसी के दोस्ती की वजह से, अलगरज यह है कि जो भी चीज़ शरीयत पर चलने में माने हो तो उस माने को दूर किया जाए। ये है तसव्वुफ़ का बुनियादी मकसद। तसव्वुफ़ का बुनियादी मकसद ये है कि शरीयत पर चलने में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर किया जाए। उन रुकावटों में ज़ाहिर कुछ चीज़ें नफ्स के लिहाज से होंगी, कुछ चीज़ें दिल के लिहाज से होंगी, कुछ चीज़ें अक़ल के लिहाज से होंगी। तो अक़ल के जो मसाइल है वो उस तरीके से दुरुस्त करनी पड़ेंगी, जो नफ्स की जो है वो नफ्स की तरबियत से दुरुस्त होंगी, और जो दिल की बात है तो वो ज़ाहिर वो दिल की असलाह के साथ ही वो चीज़ें दुरुस्त होंगी। तो इन तीन चीज़ों पर हम इस अंदाज में गौर करेंगे या फिक्र करेंगे इनकी, ताकि वो मवानी दुरुस्त हो जाए, मवानी दूर हो जाए, या जिन चीज़ों की वजह से शरीयत पर अमल मुमकिन नहीं या मुश्किल रहा है उन चीज़ों को दूर किया जाए, ताकि शरीयत के ऊपर अमल हमारे लिए मुमकिन हो जाए, आसान हो जाए। तसव्वुफ़ की एक अलहदा फ़न की तौर पर ज़रूरत। जैसा कि अमाल ज़ाहिर में बाज़ चीज़ें फ़र्ज हैं, बाज़ वाजिब हैं, बाज़ सुन्नत है और बाज़ मुस्तहब, इस तरह अमाल बातिन में भी बाज़ चीज़ें फ़र्ज हैं, बाज़ वाजिब हैं, बाज़ सुन्नत है और बाज़ मुस्तहब। दूसरी तरफ अमाल ज़ाहिर में बाज़ चीज़ें हराम है, बाज़ मकरूह तहरीमी हैं और बाज़ मकरूह तंज़ीही, इस तरह अमाल बातिन में भी बाज़ चीज़ें हराम है, बाज़ मकरूह तहरीमी हैं और बाज़ मकरूह तंज़ीही। इसलिए हर चीज़ का उसके मुकाम के हिसाब से मुतालबा होगा। जब बड़े बड़े लोग अमाल बातिन के एक हराम में मुबतला होने की वजह से जहन्नम जा सकते हैं तो फिर इससे बचना कितना ज़रूरी होगा। सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नौफ़ी इलैहिम अमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़ज़ून उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन नार व हबित मा सनऊ फ़ीहा व बातिलु मा कानू यअमलून। यानी जो शख्स अपने अमाल खैर से महज दुनियावी ज़िंदगी की फ़ायदे की और उसकी रौनक हासिल करना चाहता है, जैसे शोहरत व निकनामी और जाह और सवाब आखिरत हासिल करने की उसमें नीयत न हो, तो हम उन लोगों को इन अमाल की जज़ा इनको दुनिया ही में पूरी तौर से भुगता देते हैं। उनके लिए दुनिया में कुछ कमी नहीं होती, यानी दुनिया में इनके नेक अमाल के अवज़ इनको नेक नामी और सेहत व फराह ऐशो कसरत अमवाल औलाद अनायत कर दीजिए, जबकि इनके अमाल का असर इनके अजदाद पर गालिब हो, यानी किसी वजह से वो मतलब यानी कि वो कम ना होते हों। और अगर अजदाद गालिब हों, यानी मतलब ये कि उससे ऐसी चीज़ें हो जो कि इन चीज़ों को कम कर रहा हो, तो फिर ये असर भी नहीं होता। मसलन एक शख्स से वो बहुत सब्र करने वाला है, लोगों के साथ तहमुल मिजाजी के साथ मिलता है और काफ़ी लोगों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव रखता है, तो उनको उन चीज़ों का बदला मिल जाए कि लोग भी उनका ख्याल रखेंगे, लोग भी उनके साथ। अब ऐसे शख्स उनको दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायदे मिल जाएंगे, लेकिन अगर इस वक्त कोई ज़िद उसका ज़िद उससे मसलन वो फजूल ख़र्च हो, तो अगरचे बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल टिक करेंगे, फजूल खर्च की वजह से तो उसकी कमी होगी, तो लिहाजा फजूल खर्च की वजह से अपना कबाड़ कर लेगा, तो दुनिया की वो चीज़ें फ़ायदे भी उसको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर वो फजूल खर्च मसलन नहीं है, तो फिर कम अज़ कम उसके जो फ़ायदे इनके इन चीज़ों की वजह से उनको मिल रहे होंगे वो उनको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आखिरत में उनका कोई ऐसा नहीं होगा, आखिरत में इनका कोई ऐसा नहीं होगा। ये बात मतलब यहाँ पर बयान की गई है। तो फिर ये तो दुनिया में, और आखिर रहा आखिरत में, सो ऐसे लोग हैं कि इनके लिए आखिरत में बजुस दोजख के और कुछ सवाब वगैरह नहीं होगा, उनने जो कुछ किया था वो आखिरत में सब का सब नाकारा साबित होगा। वाकई में तो कुछ जो कुछ कर रहे हैं वो अब भी बेअसर है बवजह फसाद नीयत के, मगर सूरत ज़ाहरी के अतबार से साबित समझा जाता है, आखिरत में सबूल भी ज़ाहिर हो जाएगा। मतलब यह है कि वो जो कर रहे हैं इस वक्त भी नीयत की वजह से आखिरत में तो उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि नीयत उनकी आखिरत की नहीं है, तो उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं हो रहा, आखिरत में वो चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। मतलब ये वाली बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स दुनिया के लिए काम करता है तो उसका दुनिया में असर मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन आखिरत में तो उसका कोई अजर नहीं होगा। और अगर आखिरत के लिए करता है और ईमान रखता है तो फिर आखिरत में तो उसका फ़ायदा होगा ही, दुनिया में भी उसका इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी ये वाली बात। तो ये तर्जुमा बयान कुरान से लिया गया है, उसमें कौसैन में तफसीरी कलमात है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस शरीफ है, इन नमल आमालो बिन नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। यानी ज़ाहिर शरीफ के जितने भी आमाल हैं इनका नतीजा इस पर मौकूफ़ होगा कि अमाल किसके लिए किए गए। اس طرح ترمذی شریف کے ایک طویل حدیث شریف کے مطابق تین آدمی جو اعلیٰ عمل کو کرنے والے ہیں، ان میں ایک قاری ہے، ایک سخی ہے اور ایک شہید ہے، لیکن چونکہ عمل انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے تھے تو نتیجتاً بجائے جنت کے جہنم پہنچ گئے۔ اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی روایت کے دوران بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کے دل میں اگر رائی پر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ریا اور تکبر سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں کہ ریا اور تکبر یہ اعمال ظاہرہ نہیں ہے۔ اب کوئی شخص تمام اعمال ظاہرہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب کچھ کرتا ہو لیکن یہ اعمال باطنہ اس کی خراب ہو، یعنی جو باطنی عمل اس کے خراب ہو، اس کی وجہ سے اگر جہنم چلا جائے تو کتنے خسارے کی بات ہے، اور ہم لوگ کا سوچ کتنا کمزور ہوگا، ہم تو اس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جہنمی ہوگا۔ اس وجہ سے یہ گویا کہ جس طرح ظاہری چیزیں اہم ہیں، ظاہری چیز کو بھی ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی بہت اہم ہیں۔ مطلب کوئی نماز روزہ چھوڑ دے تو ظاہر ہے وہ تو اس کی سزا بھگتیں گے، تو ظاہری چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ جو قلبی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں ہیں، وہ بھی بہت اہم ہیں۔ ہم دونوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم صرف ایک کا نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ صرف ایک پر اکتفا کر لیتے ہیں، مثلا لوگ صرف سمجھتے ہیں بس ہمارے ظاہری چیزیں ٹھیک ہو گئی تو صحیح ہو گیا مال، اور جو جاہل صوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باطنی چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو بس وہ کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، دونوں ٹھیک ہونے چاہیے۔ ہاں جی، یہ والی بات۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یعنی ہم لوگوں کو دونوں کا کام کرنا، یہ دونوں اعمال قلب ہی تو ہیں۔ بس اعمال اخلاق حمیدہ کا حاصل کرنا اور اخلاق ذمیمہ سے چھٹکارا پانا روحانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور جس کو یہ صحت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا قلب قلب سلیم کہلاتا ہے، جیسے کہ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن مال اور بیٹے کوئی نفع نہیں دیں گے مگر سلیم دل جو لے کے آیا ہو اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ یہاں ذرا غور فرمائیں، تھوڑی سی باتیں ایکسپلین کرنی ہوتی ہے۔ مثلا قلب سلیم ہے تو لگتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہوں کہ بس صرف دل کی اصلاح کافی ہے، نہیں، قلب سلیم ہو گئی اس وقت جب اس کا نفس بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ آپ اگر جیسے مثال کے طور پر ایک حوض کا صفائی کرنا چاہتی ہیں، اس حوض کے اندر چار پانچ پائپ آ رہے ہوں جس پہ گندگی آ رہی ہو، وہ پائپ گندگی کے جتنے جب چل رہے ہوں گے تو کیا اس حوض کی صفائی ہو سکتی ہے؟ ظاہر اس حوض کی صفائی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنے جتنا آپ صفائی کر رہی ہیں وہ حوض اس کو دوبارہ گندگی سے بھر رہا ہے، نہیں، وہ پائپ اس کو دوبارہ گندگی سے بھر رہے ہیں، تو اس وقت ان پائپوں کو بھی صاف کرنا پڑے گا اور یا بند کرنا پڑے گا تاکہ حوض صرف مطلب جو ہے نا وہ رہ جائے، اس کے بعد پھر آپ حوض کی صفائی بھی کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم اپنی دل کی چیز کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نفس کی اصلاح بھی ضروری ہے، بغیر نفس کی اصلاح کے دل درست ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ تو دل پر ہی ہے، لیکن بنے گا کس طرح؟ جس طرح نتیجہ تقوی کا دل میں آتا ہے، اور جو فجور ہے اس کا اثر بھی دل میں آتا ہے نتیجہ کے طور پر، لیکن آتے تو نفس کی طرف سے، یہ نفس کے اندر ہی فجور پیدا ہوتے ہیں، تقاضے فجور کے نفس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے فجور سے گناہ بنتے ہیں، وہ گناہ کا اثر دل پر آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اچھائی کا اثر ہے، تقوی کا اثر ہے، کیونکہ جو تقوی ہے وہ بھی نفس میں بنتا ہے لیکن اس کا اثر دل پر آتا ہے، لہذا دونوں چیزیں اخیر میں تو آ گئے دل پر۔ اب دل بن گیا متقی، مثلا دل بن گیا صاف، دل بن گیا بیدار، دل بن گیا روشن، اب اسی کے ذریعے اسی کی حالت میں ہم اللہ کے سامنے پہنچ گئے تو کتنا اچھا ہوگا، پھر اللہ جل شانہ ہمیں ظاہر اپنا بنائے گا، اپنا سمجھے گا، تو وہ جنم اللہ میں فائدہ اس کا ہوگا۔ اور اگر دل ہمارا اس کے مخالف ہے، یہ گندا ہے، دنیا کی محبت میں آلودہ ہے، اور اس کی وجہ سے مطلب اس کے اندر اخلاق ذمیمہ بھرے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ قلب سلیم نہیں ہوگا، قلب سلیم و سقیم ہوگا۔ تو فیصلہ تو دل پر ہے، لیکن دل کا فیصلہ کس چیز پر ہے؟ وہ نفس پر ہے۔ मतलब ये चीज़ें जो है ना, मतलब इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद लोग इस वजह से गलती करके सही मकासद हासिल नहीं करते। बस इन आयत मुबारका और अहादीस शरीफ़ा से तसव्वुफ़ की ज़रूरत खूब वाज़ हो गई। आगे हर एक की मर्ज़ी है, क्योंकि यहाँ तो इख्तियार दिया गया और अच्छे भले की तमीज़ सिखाई गई है। हर एक को अपने इरादे का फल मिलेगा। अमाल ज़ाहिरा तो फ़िक्र की सूरत में किताबों में मुदवन हो गए। इनको किसी से भी सीख कर इन पर अमल करने की ज़रूरत है। इनकी तशरीह किसी भी आलम से ली जा सकती है, लेकिन अपने हालात में अमल कल्बिया पर कैसे अमल हो, यह आसान बात नहीं। मसलन नमाज को ले लिया जाए, इसके फ़राइज़ वाजिबात सुनन और मुस्तहबात पर अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। इनमें से किसी किताब का भी मुताला कर लिया जाएगा तो नमाज के मसाइल तो मालूम हो जाएंगे और थोड़ी सी कोशिश से इन तमाम उमूर को सीखा भी जा सकेगा। इसके लिए किसी बड़े आलम के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जिसने भी नमाज अच्छी तरह सीखी हो, उससे ही नमाज आसानी से सीखी जा सकती है, क्योंकि इसमें से हर एक चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए इसके सिवा कोई मुश्किल नहीं। लेकिन नमाज के अंदर अगर किसी में खुशू या इखलास नहीं है तो उसका पैदा करना अलबत्ता आसान नहीं है। ना तो ये महज किताबों से सीखने की चीज़ें हैं और नहीं आप हर एक से पूछ पूछ कर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा किसी एक को रहनुमा बनाना पड़ता है जो इस रास्ते से गुजरा हो, और रास्ता चूंकि नाजुक है इसलिए इसमें किस खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि रहनुमा अपने फ़न में ताक होने के साथ साथ मुस्तनद भी हो, यानी उस पर एतमाद का सिलसिला हुजूर सज़म तक पहुँचता हो। इसी को सिलसिला कहते हैं। यही वजह है कि हज़रत तानवी ने फरमाया था, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो मैं उसके बारे में इतना फिक्रमंद नहीं होता, क्योंकि अभी अगर नमाजी होने की नीयत कर ले तो एक सेकंड में नमाजी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी में तकब्बुर देखता हूँ तो उसके बारे में डर जाता हूँ, क्योंकि अगर उसने अपने इस्लाह की नीयत करके काम शुरू भी कर लिया तो तकब्बुर तो निकलते निकलते काफ़ी अरसा लग सकता है। हाँ, ये वाली बात है, यानी जो अंदरून की जो इस्लाह है ये काफ़ी काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। इस वजह से इसके बाकायदा एहतमाम करना पड़ता है और उसको ठीक करना पड़ता है, वरना फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, वो ज़ाहिर की चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। अब एक मशहूर सवाल आ सकता है जो कि हम लोगों के लिए वाकईतन एक सोच का मतलब वह है मैदान है, वो जो है ना, मतलब क्या है तसव्वुफ मुतनाज़ क्यों है, यानी इतनी अच्छी चीज़ इसके बारे में दो राय क्यों है, हो सकती है तसव्वुफ मुतनाज़ क्यों है, इसके बारे में दो राय क्यों हो सकती है। ये अमर वाकई परेशान कर है कि इतना अहम और मुफीद फ़न मुतनाज़ कैसे बना। जब हम अपने काबिर की किताबों को देखते हैं तो हमारे सारे काबिर न सिर्फ इस फ़न के कदरदान नज़र आते हैं, बल्कि इनमें बाद ने तो इस फ़न की खिदमत में अपनी उम्र गुजारी। लेकिन आज उन्हीं से मनसूब बाज हजरात इस फ़न के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि गुमराही का एक दरवाज़ा हो। इसकी वजह इस आजिज़ की समझ में ही आई है कि तसव्वुफ़ के जो मकासद है इनसे तो किसी को भी इनकार नहीं, लेकिन जो इन मकासद के ज़राए हैं इन पर बाज़ लोग कलाम करते हैं। इसकी वजह के बाद न समझो ने इन ज़राए को मकासद के तौर पर पेश करके तसव्वुफ़ का हुलिया बिगाड़ दिया। ना समझो का तो खैर इलाज मुमकिन है, क्योंकि वो जहालत से ऐसे करते हैं, इसलिए अगर जहालत दूर हो जाएगी तो इसलाह हो जाएगी। लेकिन जो लोग जानबूझ कर अपने चंद ज़ाती मफादात की खातर ज़राए को मकासद करार देते हैं, इनके यहाँ से असल चीज़ रुख्सत हो जाती है और चंद रसूमात रह जाते हैं। ये बहुत अहम बात है। मसलन एक सज्जादा नशीन है, उसको बाप के वरसे में पीरी मिल गई, बाप उसका पीर था, हालांकि बजात खुद अकल के खिलाफ है, क्योंकि कोई किसी डॉक्टर का बेटा क्या वाकई डॉक्टर हो सकता है अगर उसने डॉक्टर की तालीम हासिल नहीं की हो। उसका बाप डॉक्टर होगा तो उसका बेटा तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर हो। अगर उसका बाप इंजीनियर है तो जरूरी नहीं कि उसका बेटा भी इंजीनियर हो। अगर उसका बाप प्रोफेसर है तो ज़रूरत तो नहीं कि उसका बेटा भी प्रोफेसर हो। ये तो अपने अपने तौर पे हासिल करने की चीज़ होती है, ये कि मिरासी चीज़ें तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसी इतनी आम है कि किसी और चीज़ को समझा ही नहीं जा सकता। बाप पीर है तो उसका बेटा पीर है, दूसरे में चाहे कितनी हलियत है वो पीर नहीं बन सकता। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन ये है हमारे यहाँ तो ये चीज़ है, हमारे यहाँ तो ये चीज़ है। अब इसी को सज्जादा नशीन कहते हैं। उनका ख्याल मैकेनिकल तौर पे है कि बस इस जद्दी गद्दी पर कोई बैठ गया तो बस सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। मैकेनिकल नहीं है, तो अमली चीज़ें हैं, ये तो बाकायदा मेहनत से हासिल की जाती हैं। अब अगर ऐसी बात हो जाए, सज्जादा नशीन साहब आ गए और वो अपने मसनद पर बैठ गए, और उसने काम शुरू कर लिया, लोग उनके पास आते हैं। अब उसके पास खुद कुछ है नहीं, मिसाल के तौर पर उनका वालिद डॉक्टर था और ये उसकी जगह पे बैठ गया डॉक्टरी करने लगा, तो उस सूरत में क्या करेगा? वो जो पुरानी शीशा पड़ी होंगी उसी को मरीज अरे को देते रहेंगे, उसको पता तो नहीं होगा कि किसको क्या देना है, ज़ाहिर उसको दिए तो पता नहीं होगा। अब कोई मर रहा होगा, कोई जी रहा होगा, कोई किसी को फायदा होगा, किसी को बार होगा, ज़ाहिर मतलब बाई चांस अगर किसी को अच्छा चीज़ दे दी तो ठीक हो जाएगा, और अगर गलत चीज़ दे दी तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसके पास ना इलम है ना तरबियत है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि वो जो चीज़ें पहले से सीखी होती है ना, तो बगैर सोचे समझे वो दूसरों को देने लगते हैं। हाँ जी, इसका नतीजा फिर ये होता है कि लोगों की चीज़ें ख़राब, और ये इनको चूंकि पास वाहिद ही ज़रूर होता है तो उसके साथ ऐसे जुड़ा होता है कि जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात करते कहते ये फलाँ है, ये फलाँ है, ये फलाँ है, ताकि लोग उनकी बात ना सुने और लोगों को अच्छे लोगों के साथ दूर करने की कोशिश करेगा। हमारे पास करीब ही एक गद्दी है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेने से फिर मसाइल पैदा होते हैं। इनके दादा बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इसी पिंडी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े जानवर, और अब भी जब उनकी हिस्ट्री सुनाते हैं वो अपने उर्स वगैरह के मौके पर, तो वो कहते हैं कि फलां थे और फलां जगह से इल्म हासिल की, वो सारी बातें वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन अब जो इनके पास आए तो उनके पास तो कुछ नहीं है, तो अब वो पीर बन गए, और पीर भी ऐसे बन गए कि पता नहीं क्या क्या उनके साथ लोगों ने बातें बांध ली। हाँ जी, और पले कुछ नहीं, तो इससे फिर फसाद ही पैदा होगा ना, ज़ाहिर मतलब है कि। तो अब ये है कि मतलब उनके पास अगर कोई गलती से चला गया तो अब वो उसको चाहेगा कि वो किसी और के पास ना जाए, किसी और से ना सुने, कोई और बात ना करे, तो वो काफ़ी जो है ना उनको यानी मतलब पाबंद रखता है और दूसरों के बारे में गलत बातें करता है। तो वो ज़ाहिर मतलब ये कि लोग तो नहीं जानते, तो अब ये इस वजह से जो है ना हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो असल हैं उसके साथ आया हमारी चीज़ें टैली करती हैं नहीं करती। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो काम खराब होगा, चाहे कोई भी होगा। तो ये है कि इनको मकासद के तौर पर पेश करके तसव्वुफ का हुलिया बिगाड़ लिया। ना समझो का तो खैर इलाज मुमकिन है, क्योंकि वो जहालत से ऐसा करते हैं, इसलिए अगर जहालत दूर हो जाए तो इनकी इसलाह हो जाती है। लेकिन जो लोग जानबूझकर अपने चंद जाती मफादात की खातिर ज़राए को मकासद करार देते हैं, उनकी ऐसी असल चीज़ रुख्सत हो जाती है और चंद रुसूमात रह जाते हैं। जिसमें वक्त के साथ साथ मजीद शिद्दत आती जाती, जैसे कि बाद सही बुजुर्गों के वफात के बाद इनके सज्जादे नशीन ने किया। हज़रत मौलाना शबलान रहम से तरीक़ कलंदर में फरमाते हैं, तसव्वुफ़ के उसूल इसे कुरान और हदीस में मौजूद हैं, और ये जो लोग समझते हैं कि तसव्वुफ़ कुरान हदीस में नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गाली सूफिया का भी ये ख्याल है और खुशकुलमा का भी, तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ से कुरान और हदीस खाली है, मगर दोनों गलत समझे। खुशकुलमा तो ये कहते हैं कि तसव्वुफ़ कोई चीज़ नहीं, सब वाहियात है, बस नमाज रोज़ा कुरान हदीस से साबित है, इसी को करना चाहिए। ये सूफियों ने कहाँ का झगड़ा निकाला है? तो गोया मतलब उनके उनके नज़दीक ऐसा है कि जो चीज़ ज़ाहिर नज़र आ रही है बस वो काफ़ी है ना, बस इसे अंदर जाने की क्या ज़रूरत है। तो चलो फिर बिजली की तार को हाथ लगा दो, पता चल जाएगा तुम कितने बाज़र हो, बिजली तो नज़र नहीं आ रही ना, तो बस पे यकीन ना करो। हाँ जी, तो जैसे बिजली नज़र नहीं आ रही लेकिन हकीकत है, अभी बिजली चली जाए तो आपके पंखे भी बंद हो जाएंगे, आपके जो है ना वो फ्रिज भी बंद हो जाएगा, आपका ओवन भी बंद हो जाएगा, आपको कोई चीज़ नहीं चलेगा जो बिजली से चलने वाला होगा, लेकिन नज़र तो नहीं आता आपको बिजली। तो इसी तरह तसव्वुफ़ का भी जो रूह है वो अगर चली जाए तो बेजार मतलब है कि आपके सारे अमल बेजान हो जाएंगे। आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे, नमाज के अंदर जान नहीं होगी, आप रोज़े रख रहे होंगे, रोज़े के अंदर जान नहीं होगी, आप हज कर रहे होंगे, हज के अंदर जान नहीं होगी, आप बल्कि कुरान पढ़ रहे होंगे उसके अंदर जान नहीं होगी। क्यों? जान का ताल्लुक दिल के साथ है, वो आपके उस वो आपके अंदर है नहीं, तो सारी चीज़ें जो है ना मतलब वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप ज़ाहिर को देखते हैं। तो असल बात यह है कि ज़ाहिर और बातिन दोनों है, ज़ाहिर और बातिन दोनों है। तो ये जो खुशकुलमा है वो कहते हैं तसव्वुफ़ कोई चीज़ नहीं, सब वाहियात है, बस नमाज रोज़ा कुरान और हदीस से साबित है, इसको करना चाहिए। सूफियों ने कहाँ का झगड़ा निकाला है? तो गोयन के नज़दीक कुरान और हदीस तसव्वुफ़ से खाली हैं। ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनने ये बात की है, वो बजाय खुद बहुत बड़ा आलिम है, मुफ्ती है, हाँ जी शेख उल हदीस है। हाँ, ये मतलब मैं आम आदमी नहीं है कि उलमा के खिलाफ है इसलिए बात कर ली, मतलब ज़ाहिर बजाय खुद बहुत बड़े मुफ्ती हैं। तो ये जो है ना, मतलब ये है कि ये मतलब हजरत ने फरमाया ये तो, और गाली सूफी ये कहते हैं कुरान हदीस में तो जाहिर अहकाम है, तसव्वुफ तो इल्म बातिन है, इनके नज़दीक तसव्वुफ में कुरान हदीस ही की जरूरत नहीं है। गरज दोनों हजरात कुरान हदीस को तसव्वुफ से खाली समझते हैं, फिर अपने अपने ख्याल के मुताबिक एक ने तसव्वुफ को छोड़ा और एक ने कुरान हदीस को। इल्मी इश्कालात का जवाब, अब यह हजरत वो जो उलमा खुश्क हैं उनको जवाब दे रहे हैं कि तसव्वुफ एक हकीकत है, जो उलमा खुश्क हैं उनको जवाब दे। हजरत तानवी रहमत से फरमाते हैं कि जिस तरह कुरान में वाकिमुस्सलाता व अतुज़्ज़काह, वो नमाज कायम करो ज़कात दो मौजूद है, इस तरह या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान वालों सब्र करो, आले इमरान की 200 नंबर आयत, और वशकुरुल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, ये भी मौजूद है। अगर एक मुकाम पर कुतिबा अलैकुम सियाम यानी तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए मौजूद है, वलिल्लाह वलन्नास हज्जुल बैत, वो लोग पर अल्लाह ताला के घर का हज करना अल्लाह ताला का हक है, ये मौजूद है, तो दूसरे मुकाम पर युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहू, अनकरीब अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा जिनको अल्लाह चाहते हैं और उसको चाहते हैं, और वह लजीन अमन व अशद्द हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वालों को तो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत होती है, ये भी देख लोगे। जहाँ वैज़ा क़ामू इलस सलात क़ामू कुसाला, और जब नमाज में खड़े होते तो सुस्त बनकर खड़े होते हैं, ये अगर देखोगे तो उसके साथ युराउन नासा लोगों को दिखाते हैं, भी मौजूद है। अगर मुकाम पर तारिक सलात तारिक ज़कात की मजम्मत है तो दूसरे मुकाम पर तकब्बुर और जब ये बुराई है, ये तो कुरान है। हदीस शरीफ देखो तो रियाज़ुस सालिहीन उठा के देखो, रियाज़ुस सालिहीन में सारे अहादीस शरीफ वही है जो तसव्वुफ से मुतालिक है, अबवाब रिया, इखलास, तवक्कुल, ज़ुहद, सब्र, शुक्र, इसके बारे में हदीस शरीफ आपको मिलेंगी। तो हदीस शरीफ अभी माशाल्लाह इसके ऊपर, इस तरह हदीस शरीफ को देख जिस तरह अबवाब नमाज, रोज़ा, बिया और शरा, निकाह और तलाक पाओगे, अबवाब रिया और किबर भी देखोगे। इस बात से कौन मुसलमान इनकार कर सकता है कि जिस तरह आमाल ज़ाहरा हुक्म खुदाबंदी हैं, इस तरह आमाल बातिनी भी हुक्म इलाही हैं। क्या वाकिमुस्सला था व आतुल ज़का था, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, ये अमर का सीगा है यानी हुक्म दिया जा रहा है, और वस्बिरु वश्कुरु अमर का सीगा नहीं। कुतिबा अलैकुम सियाम से रोज़ा की मशरूयत और मामूर भी अगर होना साबित होता है, और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु से मोहब्बत का मामूर भी होना साबित नहीं होगा, बल्कि अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि ज़ाहरी अमाल सब के सब ही बातिन की असलाह के लिए और बातिन की सफाई मौजब निजात है। देखो ना कुरान पाक में है, इन सलात तनहा अनिल फाशाई वल मुनकर, तो फाशा मुनकर कहाँ पर है, वो तो बातिन ही चीज है। हाँ जी, तो वो उसके लिए नमाज है, रोजे के बारे लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल कर लो, ये क्या, ये कहाँ पर होता है, ये जाहिर नहीं है, ये तो दिल का फेल है। हाँ जी, इस तरह जो है ना वो ज़कात से हुब्बे माल ख़त्म होता है, हाँ, और इस तरह जो है ना हज के ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और जो दुनियावी अकल है उस पर इन्हिसार कम होता है। तो अब ये जो चीज़ मतलब ज़ाहिर है, वो सारी की सारी चीज़ें असल में जो अमाल है वो बातिन की असलाह के लिए, और बातिन की असलाह अल्लाह को नज़र आ रही होती है। अल्लाह पाक फरमाते हैं यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं, तुम्हारे चेहरों को तो नहीं देखते। तो गोया अल्लाह की नज़र दिल पर होती है, और ये चीज़ दिल की असलाह के लिए है, तो मतलब भी क्या हुआ, आप दिल को इग्नोर कर लेंगे तो आपके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाहु अकबर, बल्कि अगर गौर किया तो मालूम हो कि जाहरी अमाल सब के सब भी बातिन के असलाह के लिए, और बातिन की सफाई मौजब निजात है, और इसकी कुदूरत मौजब हलाकत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, बेशक वो कामयाब हो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और बेशक वो नामुराद हुआ जिसने उसको खाक में मिला छोड़ा। यो मलायन फमाल वला बनून, यानी उस दिन माल और औलाद काम नहीं आएंगे मगर जो शख्स अल्लाह ताला के पास सलीम दिल लेके आया। देखें तो पहली आयत में तस्किया बातिन को मौजब फलाह, और दूसरे में सलीम कल्ब के बगैर माल और औलाद सबको गैर नाफे बताया गया, यानी तस्किया बातिन जो है कद अफलाह मन ज़क्काहा, ये तस्किया बातिन है, उसको जो है ना मौजब फलाह करा दिया गया, और यौम ला माल वनू इल्ला मन तलब कल्ब सलीम, इसमें सलीम कल्ब के बगैर माल औलाद सबको गैर नाफे करा दिया गया। ایمان اور عقائد جن پر سارے عمل کی مقبولیت منحصر ہے قلب ہی کا تو فعل ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے، پس معلوم ہوا کہ اصل مقصود تو دل کی اصلاح ہے، جس سے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مدار جو مقام ہوتا ہے اسی کا نام اصطلاح عرف میں تصوف ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستفسر کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ فن سلوک نظری سے زیادہ عملی ہے، تھیوریٹیکل نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، اس کے لیے ایسے اکاملین کی ضرورت ہے جو اپنے حسن اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اسوہ نبوی پر ہوں، جو اپنے آداب اخلاق عادات اور اتباع اوامر و نواہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو، جن کی صحبت میں پرتو نبوی کا اثر ہو، اور جن کا سلسلہ صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک منتہی ہو، جس کا اصطلاحی نام شجرہ ہے، جس طرح فن روایت میں اس کا نام سلسلہ ہے۔ اس مفہوم کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ علم حدیث جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا سلسلہ ہے، یہ سلوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا سلسلہ ہے۔ صحابہ دوئم کا سارا فیض صحبت نبوت کی تاثیر کا نتیجہ تھا، اس کے بعد صحابہ کے فیض سے تابعین اٹھے، اور تابعین کے فیض صحبت سے تبع تابعین کا ظہور ہوا۔ یہ تین دور ایسے جس میں پچھلی جماعت اگلی جماعت سے بحیثیت جماعت کے متاثر ہے، مگر ہر دور میں جماعت تعداد اور کیفیت میں کم ہوتی جائی چلی گئی۔ تب تابعین کے بعد جب فتنوں کا ظہور ہوا تو تعداد بھی کم ہو گئی، اب جماعت کی صحبت جماعت سے جاتی رہی، اب اشخاص کاملین کی صحبت سے اشخاص بااستعداد کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہوا، جس کا نام متاخرین نے ارادت اور پیری مریدی رکھ لیا، ورنہ قدماء اور سلف صالحین کی اصطلاح صحبت ہی کی تھی، مرید کو صحبت یافتہ کہتے تھے، جیسے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس طرح شبلی رحمۃ اللہ جنید رحمۃ اللہ علیہ بھی صحبت یافتہ کہلاتے تھے، جیسے یوں کہتے کہ فلاں شخص نے شبلی کی صحبت اٹھائی یا جنید کی صحبت اٹھائی۔ یہاں پر مطلب جو بات ہے اتنی سی بات ہے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب یہ فرمایا کہ فن سلوک جو ہے یہ پریکٹیکل چیز ہے، اس کے لیے کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو جو عقیدہ بھی ان کا صحیح ہو اور عمل بھی ان کا سنت کے مطابق ہو، اور جو اپنے تمام اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہوں، تو اس کا جو ہے مطلب جن کو مطلب جن کی صحبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت تک پہنچتی ہو، تو اسی کا نام اصطلاحی نام شجرہ ہے۔ اس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جس طریقے سے فن حدیث میں جو حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو اس کو سلسلہ حدیث کہتے ہیں، یعنی حدیث کا سلسلہ کہتے ہیں، تو اس سلسلے کی پہچان کے بغیر حدیث کی پہچان نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے صوفی کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ صحبت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے صوفی کی پہچان ہوتی ہے، وہ مستند ہوتا ہے یا مستند نہیں ہوتا۔ ہاں جی، تو اگر مستند طریقے سے آئے ہوئے تو ظاہر وہ مستند ہوگا، تو اس میں یہ بات ہے کہ پہلے دور میں فرمایا کہ پہلے دور میں یہ تھی کہ صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین، کیونکہ آپ سب نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ پہلے دور کے تین نظر جو تھے طبقے، ایک طبقہ دوسرے طبقے سے متاثر ہوتا تھا، اب پھر اس کے بعد وہ استعداد کم ہوتی گئی، نتیجتاً اب جو ہے نا وہ طبقاتی طور پہ متاثر نہیں ہوتے بلکہ شخصیتوں کے طور پہ متاثر ہوتے ہیں، مثلا کوئی اچھی شخصیت ہے، صحیح شخصیت ہے، اس سے لوگ مستفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی مطلب جن ایک طریقہ ہے، اس کا نام انہوں نے پیری مریدی رکھ لیا، تو پیری مریدی اس طریقے سے شروع ہوئی، ورنہ پہلے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، پہلے دور میں اس کو صاحب کہتے تھے کہ فلاں نے فلاں کی صحبت اٹھائی، فلاں نے فلاں کی صحبت اٹھائی ہے، تو اس کو جو ہے نا اس انداز میں لیا جاتا تھا، اصل بات یہی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تصوف جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، عملاً مطلب ثابت ہے، لہٰذا اس کو اس انداز میں لینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے جو طور طریقے چونکہ ذرائع ہیں تو ذریعے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایک مقصد ہے، مجھے صحت ایک مقصد ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس صحت کے مقصد کو بنا کر آپ اس کو حاصل کرنے کے جو ذریعے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو تجربات ہیں وہ اس کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ وجہ یہ کہ خرابی بھی مختلف ذریعوں سے آتی ہیں، تو جو بعد کے ذرائع ہیں ان کی خرابی کو بعد کے ذرائع سے دور کیا جائے گا، ہاں جی، لہٰذا ذریعوں میں تبدیلی آتی رہے گی، تو ذریعوں پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان ذریعوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں وہ نہیں ہے، تو ذریعوں کو قرآن و حدیث میں موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن مقصد کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اصل چیز تو مقصد ہے، ذریعے تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے جو کہ لوگ نہیں جانتے، اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔